स्थान का नाम है मेरा रोड। आप सभी लोग मेरा रोड के नाम को सार्थक करना, ऐसा महाराज ने प्रवचन में कहा था। तो आज निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि मेरा रोड का नाम सार्थक है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे भक्त हैं। मेरा जो है भगवान के महान भक्त थी, उसके नाम पे है, तो यह नगर का नाम मेरा रोड ये सार्थक हो रहा है। इसे बहुत ही प्रसन्नता होती है, खुशी होती है आप सभी को देख करके। मैं छोटा प्रवचन करूंगा, बहुत बड़ा प्रवचन नहीं करूंगा। और आप सबके आज्ञा है कि मैं यहाँ बैठूं, इसलिए मैं अपने को शुद्ध करने के लिए, अपने इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मैं निश्चित रूप से कुछ कहने का प्रयास करूंगा। तो एक छोटा भजन गाएंगे, इसके बाद प्रवचन करेंगे। यह भजन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की दया के विषय की, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं, और वास्तव में उनकी दया से ही हम लोग भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा कलयुग में संभव नहीं है। तो उनकी दया का, और इस भजन को श्री प्रभुपाद जी बहुत गाया करते थे, और गाते थे बड़े भाव में गाते थे, और इसकी व्याख्या भी बहुत करते थे। तो बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, और प्रभुपाद जी के बहुत ही जो है प्रिय भजन है। तो इसको हम गाएंगे, और जिन भक्तों को आता होगा वो लोग दोहरा सकते हैं। बहुत सरल है, बंगाली में है, लेकिन हिंदी जैसा भजन है। परम करुणा पहु दुईजन निताय गौर चंद्र, परम करुणा पहु दुईजन निताय गौर चंद्र, सवय अवतार सरशिरोमणि केवल आनंद कांद, सब अवतार सरसिमोमणि केवल आनंद कांद, भजो भजो भाई चैतन्य ताई सुधृण विश्वास करे, हे भजो भजो भाई चैतन्य ताई सुदृण विश्वास करे, हे विषय छड़िया सिर से मझिया मुखे बोलो हरे हरे, हे
विषाया छड़िया तेरसे मझिया मुखे बोलो हरे हरे।
जो रस में डूबे हैं उसमें से निकल करके भगवान का नाम लेना है।
देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ए मोन दयाल दादा।
त्रिभुवन में ऐसा दयालु अवतार नहीं है।
हाँ देखो रे भाई त्रिभुवन नाई ए मोन दयाल दादा। हो पासो पछी झोरे पासण बीर रे सुनी जा रे गो नगाधा।
पशु पक्षी भी इस गाथा को सुन करके उनका हृदय पिघल जाता है।
पशु पक्षी झोरे पाषाण वेद रे सुनी जा रो नगाधा। संसार मझिया रोहली बढ़िया सेवा दे नहलो आसा।
संसार में पड़े हैं भगवान के भजन के प्रति कोई अनुराग नहीं है।
हाँ संसार मझिया रोहली बढ़िया सेवा दे नहलो आसा। आपन करम बुझाय समन कहियो लोचन दासा।
हमें सावधान रहना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उसको भरना पड़ेगा।
हाय आपन करम बुझाय समन कहिए लोचन दासा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Jaya Radha, Jaya Radha, Radha, Jaya Radha, 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 Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Radha, Jaya Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranida, Jaya Gauranida, Gauranida, Jaya Gauranida. Hare Gaur Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
Jaya Om Vishnupad Paramhansa Parvarijika Achar Ashtottar Shishmad Abhay Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय श्री राधा गिरधारी भगवान की। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय श्री श्री गौनिताय की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, ग्रंथराज श्रीमद बोध गीता की, ताई गौर हरि प्रेमानंद आल गोयेष्ट संबल्योटी आल गोयेष्ट संबल्योटी आल गोयेष्ट संबल्योटी आल गोयेष्ट गुरु गौरांग आल गोयेष्ट श्री प्रभुपाद की। यह भजन जो है बहुत सरल भाषा में है और हम संक्षेप में इसका अनुवाद करूंगा। यहाँ लोचनदास ठाकुर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा के विषय में यहाँ बताते हैं इस भजन में कि कितने दयालु हैं। कहते परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र। जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जैसे परम करुणा मैं जो है जो अवतार हुआ है ऐसा अवतार और कहीं नहीं मिलेगा। सब अवतार सार श्रोमण केवल आनंद कांड। जितने भी अवतार है उन सारे अवतारों में ये श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो अवतार है ये सबसे महत्वपूर्ण अवतार है और इसमें केवल आनंद और प्रेम भगवान बांटने के लिए आए हैं। भजो भजो भाई चैतन्यताय सुदृढ़ विश्वास करिए। तो श्री लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि हे भाई हे भाइयों आप सब श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों में भजन करिए उनकी भक्ति करिए पूरे विश्वास के साथ। विषय छड़िया से रसे मझिया मुखे बोलो हरे हरे। और विषय जो है उसमें जो हम फंसे हुए विषयों में उसमें से निकल करके और अपने मुख से भगवान के नाम बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई एमोन दयाल दाता। बताते हे भाइयों आप देखो पूरे त्रिभुवन में ऐसा दयालु अवतार नहीं है कहीं। वास्तव में देखा जाए ऐसी चैतन्य महाप्रभु विषय जब हम पढ़ेंगे और फिर हम या जो देखते हैं आज ये चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा इस परंपरा में पड़ा और श्री प्रभुपाद आज पूरे विश्व में जो प्रचार किए हैं आज ऐसा कोई देश नहीं है ऐसा कोई नगर नहीं है जहां भगवान के नाम का कीर्तन नहीं हो रहा है जप नहीं हो रहा है। अच्छा देखा जाए श्री प्रभुपाद जी ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसके बाद श्री प्रभुपाद जी ने कहा था तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। लेकिन आज तक करीब 40 साल तक प्रभुपाद ने 40 साल पहले या कहा था और अभी तक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। इसका एक ही कारण है कि यह जो हरि नाम का प्रचार हो रहा है और ये भक्ति हो रही पूरे विश्व में अन्यथा अभी तक हम सब बचे नहीं होते ये इसी के वजह से क्योंकि युग धर्म का के अनुसार यह प्रचार हो रहा है और ऐसा कोई देश नहीं और नगर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि ऐसा कोई नगर आदि ग्राम जहां भी होगा सब जगह जो है भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार होगा और आज ऐसा कोई देश नहीं ऐसा जगह नहीं है कि जहां पे भगवान के नाम का प्रचार नहीं है। तो वास्तव में देखा जाए तो हम सब सुरक्षित हैं इस भगवान कुछ दुनिया में लोग हैं जो भगवान के नाम का कीर्तन और जप कर रहे हैं उनके कृपा से हम हैं। तो ये सारी कृपा है वास्तव में आ रही है श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से। यहाँ कहा देखो अरे भाई त्रिभुवने नाई एमोनो दयाल दाता। ऐसा कोई दयालु अवतार अभी नहीं है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे और भी अवतार हुए हैं सब अवतार में भगवान एक विशेष कार्य के लिए आए थे या उन्होंने कुछ भी रखा है तो कंडीशन रखा है। भगवान कृष्ण भी आए थे तो वहां भी उन्होंने कंडीशन रखा कि आप जो है सब कुछ त्याग करके यदि मेरे शरण में आओगे तब तुम्हें सभी पापों से मैं मुक्त करूंगा। सर्वधर्मान प्रतिज्ञ माम एकम शरणम व्रजा मेरे केवल शरण में आओगे तब और माम एकम शरण अहम त्वाम सर्पापेभ्यो मोक्षसामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ करके सारे धर्म इत्यादि छोड़ करके यदि कोई व्यक्ति मेरे शरण में आता है तो उसे मैं सभी पापों से मुक्त करूंगा। भगवान ने कंडीशन रखा। पहला कंडीशन का क्या है कि आप सभी धर्मों को त्यागो और फिर आओ तब आप सभी पापों से मुक्त करो हम करेंगे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जो दया है को सभी पापों के साथ कोई व्यक्ति आता है तो उसको श्री चैतन्य महाप्रभु उसको पाप से मुक्त करके हरि नाम मृत अमृत दे देते हैं। जैसे हम सब जानते हैं जगई मदई जैसे महान पापी भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने सामने से नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया वो नित्या जगई मदही नित्यानंद प्रभु के पास नहीं आया था, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं आया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया था हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के, जाओ घर घर और नगर नगर में ये भगवान के नाम का अमृत बांटो, उन्होंने आज्ञा दिया था। और श्री नित्यानंद प्रभु ने विचार करने लगे कहां कहां मैं जाऊंगा प्रचार करने के लिए, सोच रहे जाते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु के नाम जो है, जिस अवतार जो अवतार का उद्देश्य है वो बहुत जल्दी उसका प्रचार होना चाहिए। तो वो सोचने लगे कि ऐसे किस व्यक्ति के ऊपर मैं जो है कृपा करूं जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार होने का मूल उद्देश्य है पूरा हो जाए। तो उन्होंने देखा कि सबसे जो बड़ा पापी है, यदि यह भक्त बन जाए, इसको जो है भगवान कृष्ण की कृपा मिल जाए और इसमें यदि भक्ति आ जाए तो अपने आप बाकी लोग भक्त बन जाएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु का अपने आप जो है अवतार लेने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, सॉरी नित्यानंद प्रभु ने जो है जगई और मधई को टारगेट बनाया, लक्ष्य बनाया भक्त बनाने के लिए, और जगई मधई के पास सामने से गए और उसने गाली भी दिया नित्यानंद प्रभु को, मारा भी। इसके बाद भी उसको चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो है निवेदन करके कि इनको कृष्ण प्रेम बांट दो, कृष्ण प्रेम दीजिए, और उनको कृष्ण प्रेम मिला। कहने मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु किसी के योग्यता और अयोग्यता को नहीं देखते हैं, वो सामने से कृष्ण प्रेम देते क्योंकि इसी के लिए उनका अवतार हुआ है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस संस्था में हैं, इस परंपरा में हैं, जहां पे और हम जैसे देखिए प्रभुपाद जी के जीवन, प्रभुपाद जी ने पूरे भारतवर्ष में बहुत प्रयास किया प्रचार करने के लिए, लेकिन सब अपने को समझते थे कि पंडित हैं, ज्ञानी है, वो तो जानते हैं हरे कृष्ण मंत्र बहुत पहले से जानते हैं, कोई श्री प्रभुपाद जी को सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जब श्री चैतन्य श्री प्रभुपाद जी पूरे विश्व में सबसे जहां माया का सबसे बड़ा प्रभाव था अमेरिका में, वो भी न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी अपना चरण रखा और वहां उन्होंने भक्ति का प्रचार वहां से प्रारंभ किया। तो कहने का अर्थ है कि यह जो परंपरा है पतितों का उद्धार करने वाला है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करना चाहिए कि मेरे अंदर पाप, मैं तो पापी हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो इस जाति का हूं, मैं इस वर्ग का हूं, मैं ये हूं, मैं भक्ति कैसे करूंगा। नहीं, आप जैसे भी हो इधर आ जाओ, बस अपने आप आपका रास्ता खुल जाएगा अपने आप स्वतः। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का जो है संप्रदाय। इसलिए कहते हैं देखो ओ रे भाई त्रिभुवन नाई एमोन दयाल दाता, ऐसा कोई दयालु अवतार दूसरा नहीं है। पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनी जार गुण गाथा। जब ये श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विषय में यहां तक पशु पक्षी सुनते हैं, पाषाण जैसा पत्थर जैसा, जो पत्थर है ऐसे पत्थर का भी हृदय पिघल जाता है, मतलब पाषाण जैसे व्यक्ति का भी हृदय पिघल जाता है, पशु पक्षी भी श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कृपा सुन करके उनका भी जीवन में परिवर्तन हो जाता है। और यह हम साक्षात देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जो है वृंदावन जा रहे थे तो झारखंड पड़ता है, जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने जाते समय झारखंड पड़ता है। झारखंड में जब जा रहे थे तो उनके साथ उनका एक भक्त था असिस्टेंट, तो वह देखा जंगल में चैतन्य महाप्रभु, बोले हम दूसरा उनका जो सेवक था उन्होंने बोला कि महाप्रभु हम दूसरा मार्ग पकड़ के जाएंगे, तो बीच में बहुत बड़ा जंगल आएगा और इस जंगल में बहुत भयानक पशु रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने नहीं नहीं इसी मार्ग से हम चलेंगे। और जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे और कीर्तन करते हुए तो वहां बताया गया है कि सारे शेर बाघ चीते हिरण ये सब डांस कर रहे थे, मोर और सांप जो है अपने मुख में लगाकर मुंह लगा करके नृत्य कर रहे थे, और जो हिरण और शेर जो है आपस में मुंह लगा करके डांस कर रहे थे। ऐसा संभव नहीं है, ये केवल जो है गोलोक वृंदावन में संभव है, बाकी कहीं नहीं संभव है, क्योंकि ये पूरा विश्व जो है वह ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। एक दूसरे को खाने के लिए जी रहे हम यहां पे, एक दूसरे को खाने के लिए हम जी रहे हैं यहां पे, बनाए ऐसा व्यवस्था, कोई किसको खा रहा है, कोई किसको खा रहा है, हम बिना खाए किसी को जी नहीं सकते, ये नियम है संसार का। तो ये पूरा संसार ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है, लेकिन केवल ईर्ष्या द्वेष से मुक्त जगह कहां है, गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में एक दूसरे को कोई खाता नहीं है, सब आनंद में भगवान के भक्ति भजन करने में मस्त रहते हैं, उनका वही भोजन है, उनको दूसरा चीज खाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर हमें क्या होता है, हमें खाना पड़ता है, लेकिन आज तो मनुष्य इतना बिगड़ चुके हैं कि जो नहीं खाना वो भी खाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। सबके लिए इस संसार में खाना तो है ही है, लेकिन सबके लिए कोटा बनाया है, किसको क्या खाना है किसको क्या नहीं खाना है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का भोजन छीन करके खाते हैं। तो यहाँ पे ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे झारखंड से, तो पूरा वो गोलोक का वातावरण बन गया, जहां भगवान होते वहां पे उनका धाम होता है, और वहां पे सारे शेर बाघ सब नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे मुंह में मुंह लगा करके, जो जो विपरीत स्वभाव वाले जीव भी वो आपस में नृत्य कर रहे थे। और यह चीज हम देख सकते हैं, एक घर में दो या चार लोग होते हैं, घर के अंदर पति होते हैं, पत्नी होते हैं, दो बच्चे होते हैं, लेकिन आप सोचिए बहुत कम ही दिन होता है जो बड़े प्रेम से बैठकर एक साथ खाते हैं। पत्नी का मूड अलग है, पति का मूड अलग है, बच्चे का, सब एक दूसरे के अलग अलग दिशाओं में रहते हैं, बहुत कम समय होता है जो प्रेम से बैठते हैं एक घर के अंदर। लेकिन आप सोच सकते हैं यहां कितने लोग बैठे हैं, इतने जगह में कितने लोग बैठे हैं, यही एक घर में इतने लोग आ जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं बैठ सकते हैं, ईर्ष्या द्वेष है। लेकिन यहां पे क्योंकि भगवान है, यहां पे भक्त है, भगवान का भजन है, तो सब भगवान की तरफ उनका मन है, किसी का कोई ईर्ष्या द्वेष कौन क्या कर रहा है किसी से मतलब नहीं है। ये प्रभाव देखिए, तो ये भगवान का जहां भक्ति होता है, भजन होता है, जहां पे हरि नाम हो रहा है, वहां ईर्ष्या द्वेष चला जाता है। तो जितना ज्यादा हम इस वातावरण में रहेंगे उतना हम उससे ज्यादा मुक्त होंगे। तो हम देख सकते हैं आज हमारी संस्था में, देख सकते हैं कौन कहां से आया है, पूरे दुनिया के सारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, सबका खाना अलग है, सबका स्वभाव अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी सब रहते हैं, सब रहते हैं। क्रिश्चियन है, मुसलमान है, यहूदी है, हिंदू है, और उसमें भी सारे संप्रदाय के हिंदू के सारे संप्रदाय के लोग, ऐसी एक ऐसी संस्था है कि इसमें हर संप्रदाय के लोग हैं, आते हैं और रहते हैं, हर हर जगह से, हर जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिश्र संघ एक ऐसा संघ है कि हर जगह जिसमें है, वो चाहे जलाराम बापा वाला हो, चाहे स्वामी नारायण वाला हो, चाहे हो जो भी है, लेकिन यहां पर सब कोई मिलेगा, लेकिन और कहीं पर ऐसा मिलना संभव नहीं है, और सब भजन करते भक्ति। ये क्यों हो रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु कृपा से, इसलिए यहां कहते हैं पशु पक्षी झूले पाषाण बिदरे सुनी जा रहे गुण गाथा। तो हम सबका स्वभाव ही वास्तव पशु पक्षी जैसा हो गया, पशु पक्षी में लड़ाई झगड़ा करते रहना, ईर्ष्या द्वेष से भरे रहना, लेकिन यही एक स्थान है जहां पे हम ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होते, लेकिन यही बाहर चले जाते हैं फिर से ईर्ष्या द्वेष चालू हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना है अपने जीवन में, ऐसा अपना दिनचर्या बनाना है कि हमें समय ही ना मिले ये सब करने का। और ये वास्तव में यहां पे प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था किया है कि हमारे पास भक्तों के पास समय कहां है, सुबह जो है 4 बजे से लेकर 10 बजे रात तक का सबका प्रोग्राम बना हुआ है। इवन बाहर में भी जो भक्त जो है गृहस्थ भक्त है, या जो ईमानदारी से 4 नियम का पालन कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, गीता भागवत का पाठ कर रहे हैं, तो उनके पास समय कहां से आएगा ईर्ष्या करने के लिए, द्वेष करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, समय ही नहीं। तो ये वास्तव में प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था किया है कि हमको ईर्ष्या द्वेष करने का समय न हो और हम हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहे। यही यहां कह रहे हैं कि पशु पक्षी झूरे पाषाण विदरे सुनी जा रहे गुण गाथा। पशु पक्षी का भी हृदय बदल जाता है हरि नाम कीर्तन से, भगवान के नाम के जब से और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। फिर कहते हैं संसारे मझिया रोहिला पड़िया से बदे नहीं लास। और हम संसार में पड़े हैं, इतना दयालु अवतार होने पर, ऐसे संप्रदाय में आकर के, ऐसा भगवान के नाम की महिमा को सुन करके, गीता भागवत को पढ़ करके भी, फिर भी हम भगवान को भूल जाते हैं, उनके चरणों के हम याद नहीं करते, उनकी कृपा को याद नहीं करते, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। फिर कहते हैं आपन कर्म भुजिया समन कहिले लोचन दास। और ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं सब चल रहा है, जो भी कर रहे हैं हमको सब भोगना पड़ेगा। यदि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, ऐसा जो है मौके का लाभ नहीं लेंगे तो नुकसान किसका है, लाभ नुकसान किसका, हमको हमारा ही नुकसान है। अंत में तो आएगा यमराज, आएगा हिसाब लेगा अभी क्या किया है जीवन में सब, तो हमें हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो भाग्यशाली जीव है ऐसे जो है मौके का स्वर्ण अवसर का पूरा पूरा लाभ लेता है। तेज लोचनदास ठाकुर कहते हैं ऐसे सोचना नहीं जो चलो जैसा है चलता रहेगा, नहीं हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव है ये मौके का फायदा उठा लेते हैं। तो अभी हम लोग भगवद गीता के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरे नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवदीनेष्टके।
तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 8 का, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, इस श्लोक संख्या 9 के ऊपर चर्चा करने का सोचा है। तुम लोग अभी इसको दोहराएंगे और इसके बाद इसके अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ेंगे, उसके फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।
कभी पुराणां अनुशासितारां अणो अड़ियासां अनुस्मरेद यः सर्वस्य दातारा अचिंत्य रूपा आदित्यवर्णा तमसः परस्तात। कबीं पुराणमनुशासितारं अडो अड़ियासमनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारं अचिंत्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्ता। कबीं पुराणमनुशासितारं अड़ो नड़ियासमनुस्मरेद्य।
भगवत गीता नहीं है क्या किसी के पास? भगवत गीता दूसरा कापी नहीं है?
सर्वस्य दातारं अचिंत्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ता। कबीं पुराणमनुशासितारं अड़ो नड़ियासमनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारं अचिंत्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्ता।
किसी को यह श्लोक याद है? पढ़ेंगे आप? पढ़िए, एक पढ़ो एक पढ़ो एक श्लोक। नौवां श्लोक है।
कबीं पुराणमनुशासितारं अड़ो अड़ियामनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारं अचिंत्यरूपम् आदित्य वर्णाम तमसा परस्ता।
हरे कृष्णा। कभी सर्वज्ञ पुराण प्राचीनतम पुरातन अनुशासितारम नियंता अणु अणु की तुलना में अड़ियासम लघुतर अनुस्मरेद सदैव सोचता है यह जो सर्वस्य हर वस्तु का दाता राम पालक अचिंत्य अकाल्पनीय रूप जिसका स्वरूप आदित्य वर्ण सूर्य के समान प्रकाशमान तमसा अंधकार से परस्तात दिव्य परे। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। कृपा करके हमारे पीछे भगवान के दिव्य वाणी को दोहराने का कष्ट करें। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझा रहे हैं, कृपा करके आप लोग ध्यान से सुनिए। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है, यह अत्यंत कठिन है। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहां वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवद गीता के इस श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाण में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उनका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोग किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। इस प्रसंग में अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है। इसलिए अचिंत कहलाते हैं। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है, तो फिर कैसे फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता और जो अकाल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवद गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उसके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे, जिससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
ओम अज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सापिदमेन भूतले स्वयं रूपं कदाम्यहं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधवेयेव च पदिदानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो भगवान जो है इस श्लोक में उनके स्मरण करने की महत्व को बता रहे हैं कि भगवान को स्मरण करने का क्या तरीका है और किस प्रकार हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। जैसे नवधा भक्ति में हम जानते हैं कि तीसरा जो अंग है वो है स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो किसका हमें स्मरण करना है? किसका स्मरण करना है? विष्णु का स्मरण करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो हम सब, तो क्या हम सब विष्णु का स्मरण करते हैं? हम सब क्या केवल विष्णु का स्मरण करते हैं? नहीं, यहां तक भक्त लोग भी नहीं करते हैं, क्योंकि स्मरण करने का भगवान के बहुत रूप है। गोपियां हैं वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के रूप में स्मरण करती हैं, भीष्म पितामह है भगवान के वीर रस का स्मरण करते हैं, जब भगवान जो है युद्ध में थे सारथी के रूप में और भीष्म पितामह ने यह वचन लिया अपने मन में कि आज मैं इस ग्वाले को इसकी प्रतिज्ञा को तुड़वा के ही छोड़ूंगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा लिया। और भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, इस बार अपने भक्त के हृदय में भी बैठे हैं, तो समझ गए इस बात को कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कि आज मैं इस ग्वाले के प्रतिज्ञा को तुड़वाऊंगा। और उन्होंने उस दिन इतना युद्ध किया, इतने तीर के ऊपर तीर मार रहे थे और भगवान कृष्ण ने देख लिया कि आज अर्जुन बचेगा नहीं, आज अर्जुन बचेगा नहीं, और ये बूढ़ा जो है आज निश्चय कर लिया है इसको मारने के लिए। और भगवान जो है दोनों भक्तों का रथ की इच्छा को पूरा, एक तो इधर अर्जुन की सुरक्षा देना था क्योंकि माँ कुंती को अपने बुआ को उन्होंने वचन दिया था कि ये तुम्हारे पांचों बच्चे जैसे हैं वैसे मैं वापस लेके आऊंगा, एक तो इधर अपने बुआ को उन्होंने वचन दिया था और इधर जो है भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कि इसको आज मैं जो है अस्त्र शस्त्र उठवा के छुड़वाऊंगा। तो दोनों भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जो है एक तो अर्जुन की सुरक्षा किया और दूसरा उन्होंने
इतनी तेज से रथ को झटका दिया कि उसकी पहिया निकल गया और उसके पहिया को लेकर के दौड़े जो है भीष्म पितामह को मारने के लिए। और उस समय भीष्म पितामह जो श्रीमद् भागवत में वर्णन करते भगवान के रूप में, भगवान के रूप के विषय में आप सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा कि किस रूप जब मारने के लिए दौड़ रहे हैं तो भगवान के जो बाल है पीछे उड़ रहे हैं और पसीने भगवान को आए हुए हैं उनके और धूल उनको लगे हुए हैं और इतने क्रोध में भगवान, भगवान हमेशा श्याम सुंदर जब क्रोध नहीं करते हैं, जब देखो तब मुस्कुराते रहते हैं। आप देखिए कोई क्रोध कभी देखा क्रोध करते समय, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन उस दिन अपने भक्त को जो है वीर रस का स्वादन कराना था इसलिए इतने क्रोध में थे भगवान और उनके पसीने आए हुए थे, बाल जो है उनके उड़ रहे थे और धूल उनके ऊपर थे और उस रूप में जो है उन्होंने बोला बस प्रभु मैं इसी रूप का दर्शन करने के लिए इतने सालों से इतनी तपस्या किया था, इतने सालों इसी रूप का दर्शन करने के लिए आज मेरे ऊपर प्रभु आप कृपा कर दिया है। बहुत उनका हृदय गदगद हो गया भगवान को देखकर, उनके आंखों से आंसू गिरने लगे भीष्म पितामह के और बाण धनुष साइड में करके भगवान को हाथ जोड़ करके उनके स्वरूप का आनंद ले रहे थे। और उसी समय अर्जुन को बोला आप मारो इसको है। तो अलग अलग भक्त भी जो है भगवान के अलग अलग स्वरूप का विषय में उनका जो है स्मरण करते हैं, तो कोई नरसिंह देव का स्मरण करता है। लेकिन वास्तव में जो बेसिक सामान्य रूप से सबको स्मरण करना चाहिए भगवान के गुणों को समझते हुए उस चीज को यहां पे बताया गया है। सबसे पहले यह बताया गया है कि भगवान निराकार नहीं है, पुरुष है। यहां बताया कवि पुराणम अनुशासिता रन। भगवान एक तो कवि है, कवि का मतलब है हमारे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानते हैं। क्या हमको यह विश्वास है कि भगवान हमारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं हमारे हृदय में बैठ करके? नहीं विश्वास है। यदि ऐसा विश्वास होता तो हम सब भजन करते होते हैं। क्यों हम दुनिया भर एक फैक्ट्री चलाएंगे, कंपनी चलाएंगे, दौड़ेंगे भागेंगे? क्योंकि हम जानते हैं भगवान को मालूम है क्या हमारे भविष्य में होने वाला है। लेकिन सब अपने भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए भौतिक रूप से सब प्रयास में लगे हुए हैं, हर व्यक्ति प्रयास में लगा हुआ है। तो यह विश्वास नहीं है। यहां बता दे भगवान को स्मरण करना है तो कवि, कवि के रूप में। कवि मतलब भगवान, कवि मतलब नहीं है कि वो सारा लिखने वाले कविता है, नहीं। कवि मतलब है जो तीनों चीज को जानते हैं, हमारे पास्ट में कहां से हम आए हैं, क्या करके आए हैं, सब इतिहास हमारा जानते हैं। एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, लाखों करोड़ों जन्म का इतिहास भगवान को मालूम है। आज के जो आज के पहले भी त्रिकालदर्शी होते थे लोग, भक्त लोग भी कुछ त्रिकालदर्शी होते, लेकिन त्रिकालदर्शी मतलब कुछ जन्मों के विषय में जान सकते हैं, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्मों के विषय में। आज भी ज्योतिषी वगैरह बताते हैं अरे आपके पिछले जन्म में ऐसा था, अगले जन्म में ये हो गया, इस जन्म में ये हो गया, कुछ बता सकते हैं। लेकिन हमारा इतिहास नहीं बता सकते। जीव का क्या इतिहास है, कहां से आया, कहां कहां गया और कहां जाएगा, ये सारा इतिहास कोई नहीं बता सकता है, केवल भगवान बता सकते हैं। लेकिन फिर भी इसलिए अर्जुन जो है पांचवें अध्याय में इस बात को पूछता है, बोलते हैं प्रभु ये जो आपके भक्त है भजन भक्ति कर रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं लेकिन माया का प्रभाव इतना अधिक होता है, मन इतना चंचल होता है कि यदि भजन भक्ति कुछ दिन किया और माया ने उसको चपेट में ले लिया और गिर गया तो क्या उसका क्या होगा, वो उसका होगा क्या? क्योंकि उसने पूरा भक्ति नहीं किया और माया का भोग भी नहीं किया, ना तो घर का रहा ना तो घाट का रहा, होता है ना। अभी कोई जो है 20-25 साल के आयु में या 20 साल 15 साल की आयु में हरे कृष्ण को ज्वाइन कर ले तो उसका भौतिक जीवन तो खत्म हुआ ना। 15 साल की आयु में कोई हरे कृष्ण को ज्वाइन कर लिया इसका मतलब उसके भौतिक जीवन खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन का मतलब है चार पाप। भौतिक जीवन का मतलब क्या है? चार पाप। आज यही है, बड़ी बड़ी सोसाइटी का मतलब है चार पाप किया जाए ओपन रूम से तो उसको बड़ी सोसाइटी माना जाता है। व्यभिचार, मद्यपान, आजकल तो लोग बोलते भी हैं अरे हमको जाना पड़ता है, हम बड़ी सोसाइटी में रहते हैं इसलिए हमको कभी कभी तो लगाना पड़ता है, एक पैक दो पैक तो लेना पड़ता है, बोलते हैं बड़ी सोसाइटी के। हम तो बिजनेसमैन, ठीक है आप साधु संत हो ना, लेकिन हमको तो कभी कभी जाना पड़ता है, भजन करते हैं कभी कभी, माला वाला करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये है, इसको बड़ी सोसाइटी कहते हैं। जहां चार पाप होता है उसको बड़ी सोसाइटी कहा जाता है, उसको एडवांस माना जाता है कलयुग में। और आज हमारे भारत का इतना दुर्भाग्य है कि पूरे भारत में एक भी नेता नहीं है जो चारों नियमों का पालन करते हैं। एक भी नेता नहीं, कोई बताओ कोई नेता है जो चार नियमों का पालन करते हैं? पार्लियामेंट के अंदर जो है एक मिनिस्टर पकड़ा गया और ब्लू फिल्म देख रहा था बैठ करके। अब सोचिए कितना बड़ा ज्ञान है इंटरनेट पे। तो आज हमारे भारत देश होकर के ऐसे कोई हमारे नेता ऐसे नहीं है। तो कहने करते हैं कि हम जो एडवांस मान रहे हैं, तो यही चार नियम जब हरे कृष्ण में कोई आता है तो चार नियम छूट गया, तो गया उसका भौतिक जीवन, उसके ऊपर कली का प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि चार जो है पाप ही जहां होता है वहां पे कली आता है। तो चार नियम तो पहले जैसे जिस दिन आता है भक्त यहां पे उसको सिखाया जाता है चार नियम का पालन करो, भौतिक जीवन खत्म हो गया। तो अर्जुन कहता है कि मन इतना चंचल है, वो द्वापर युग में बोल रहा, द्वापर के अंत में, द्वापर के अंदर, अभी तो आप सोच रहे हैं कलयुग में हम जी रहे हैं। तो उस समय जब अर्जुन को इतना डर था तो यह प्रश्न किया कि प्रभु आप ये बताइए कि कोई भक्ति चालू किया प्रारंभ किया और माया के इतना प्रभाव है कि माया ने उसको गिरा दिया, तो फिर क्या हुआ? ना तो उसने भोग कर सका, भोग विलास कर सका, ना तो उसने भजन करके भगवान को प्राप्त कर सका, तो उसका जीवन खत्म हो गया। न तो घर करा न घाट करा, वह इस प्रकार हुआ जैसे कोई बादल, कोई बादल है तेज बादल, अभी बारिश होने वाला ऐसा लग रहा है लेकिन हवा का झोंका आया और सारे बादल को इधर बिधर कर दिया, इधर उधर कर दिया, मालूम नहीं पिया बारिश हुआ ही नहीं, एक बूंद भी नहीं गिरा, लगता कि बादल गिर अभी पानी बारिश होगा, लेकिन हवा जो है बादल को उड़ा ले जाता है कभी कभी। तो ऐसा यदि हो गया तब क्या होगा? तो फिर वो बोलता है कि इस प्रश्न का जवाब केवल आप दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ये अर्जुन कृष्ण को बोलता है कि यह प्रश्न का जवाब केवल आप दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को ही हमारे भविष्य के विषय में मालूम है, दूसरे के कोई किसी ने, भूत भी हमारा जानते हैं, अभी हम जो कर रहे हैं कितना भक्ति भजन हमने किया है वो भी जानते हैं, और आगे क्या हम करेंगे वो भी भगवान। इसलिए भगवान को अर्जुन कहता है इस प्रश्न का जवाब केवल आप दे सकते हैं। तो भगवान फिर बताते हैं, नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, भक्तों का ऐसी दशा जितना भी भक्ति किया है उसको पूरा पूरा उसको मिलेगा, थोड़ा सा भी भक्ति किया है तो उसको मिलेगा। तो बहुत लंबा भक्ति किया, सुचि नाम शिमताम के योग भ्रष्ट भी जाए, यदि कोई व्यक्ति थोड़े समय तक भक्ति किया है, मान लो आया हरे कृष्ण में ज्वाइन किया कुछ दिन, दो चार साल पांच साल हरे कृष्ण का जप किया, प्रसाद खाया, चार नियम का पालन किया, खूब नाचा गाया और फिर संसार की चकाचौंध में फिर से चला गया, तो उसका जितना किया उसका फल जाएगा नहीं, क्योंकि वो माया के प्रभाव से बाहर चला गया। माया का प्रभाव है, सब देख रहा है, सब पास गाड़ी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, सब घूम रहे हैं, मैं तो ऐसे भजन कर रहा हूं, मेरा क्या होगा? इस दौड़ में मुझे भी भागना है, आ जाता है, भक्तों के भी दिमाग में आता है ऐसी बात। तो चला गया, तो उसको भोगने की इच्छा थी, भजन करना था, मन था भजन करने का, लेकिन भौतिक जो आकर्षण था उसको खींच के लेके चला गया। तो उसके विषय में भगवान बोलते हैं सुचि नाम शिमताम गेहे, उसका ऐसे जन्म, ऐसे घर में जन्म होता है शिमताम गेहे, जहां पे पहले से ही धन हो, पहले तो उसको स्वर्ग भेज देते। स्वर्ग का भक्तों को केवल एंट्री करने से, इस गेट में एंट्री हो गया ना तो उसको स्वर्ग मिलेगा 100%, केवल एंट्री होने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत सारा देवताओं की पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, किसके लिए? स्वर्ग जाने के लिए। यह चीज भक्तों को केवल एंट्री हो गया, एक बार प्रसाद खा लिया, नाम लिया, उसको स्वर्ग मिलेगा एक बार। क्यों? क्योंकि युग धर्म है, हरि नाम जो है युग धर्म है। कहा जाता है कि इस कलयुग में आप सारे साधना करो, सारे व्रत करो, तपस्या करो, दान करो, और कैसा करो? पहाड़ के जैसा करो, दान तपस्या व्रत इत्यादि पहाड़ के जैसा करो, पहाड़ मतलब बहुत ज्यादा करो, तो उसका फल कलयुग में सरसों के जैसा है, मस्टर्ड सीड होता है ना, उसका फल ऐसा है। और हरि नाम आप करो, कैसे भी करो, थोड़ा भी करो, एक बार बोलो, दो बार बोलो, थोड़ा भी करो, लेकिन इसका फल कैसा है? पहाड़ के जैसा है, इतना अंतर है, क्योंकि युग धर्म है। जैसे कोई अभी रोग हो जाता है, डेंगू रोग हो गया, डेंगू बीमारी आ गई, तो आप सारी दवाइयां खा लो बुखार का, जब तक आप डेंगू वाला नहीं खाओगे तब तक आपकी बीमारी कुछ होने वाला नहीं है। तो इस कलयुग में जो बीमारी है वो उसके लिए हरि नाम जो है वो दवा है। भगवान बोलते हैं औषधि, आज सुबह हो रहा था, बोलते हैं भगवान लाए हैं औषधि, दे रहे हैं लोगों को, दे औषधि है, कलयुग की बीमारी को ठीक करने का ये दवा है। तो थोड़ा लो या ज्यादा, लेकिन जितना भी लोगे उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। तो स्वर्ग तो ऐसे ही मिल जाता है, स्वर्ग के लिए चिंता मत करो। तो बताते हैं कि क्योंकि भोग विलास करने के एक चकाचौंध में आकर्षित हो गया भक्त, तो उसको तो सिमताम गे है, सबसे पहले वो जाएगा स्वर्ग, स्वर्ग को खूब भोगेगा। और स्वर्ग का भोग तो आपको मालूम है, शास्त्र में पढ़ा होगा, जानते होंगे कि तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, जो स्वर्ग का भोग है विशाल है। यहाँ क्या है, देवता लोग यहाँ पे अपना पांव भी नहीं रखते है, इतना गंदा है। बॉम्बे में, बॉम्बे में तो मेरे ख्याल से हमारे केनिया वाले आएंगे तो नहीं रखेंगे पांव, बहुत गंदा है ये बॉम्बे, इतना गंदा शहर है, लेकिन कितने लोग रह रहे हैं, किसके लिए रह रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, भोग विलास करने के लिए। और लेकिन हम भाग्यशाली है कि मीरा रोड में जो रह रहा है बहुत भाग्यशाली है, अन्यथा यहाँ क्या है, हर जगह मच्छर है, गंदगी है, नाले का दुर्गंध है, सब जगह करोड़ों में फ्लैट ले रहे हो, सुबह निकले बाहर तो बदबू आ रहा है गटर का, क्या है। तो फिर भी आप देखिए कि लेकिन जो स्वर्ग के भोग है बहुत विशाल है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशाल, वहां का भोग जो है बहुत विशाल है, हम सोच नहीं सकते। भागवत में पढ़ेंगे जब स्वर्ग का भोग, तो विषय हम सोच सकते हैं। देवता लोग यहां पे आते नहीं है, इतना गंदा जगह, जैसे सुअर है, सुअर हमारा जो मल होता है सुअर के लिए बहुत बड़ा भोग होता है, ऐसे जो है हमारा जो हम रोज खाते हैं ना, अचरा कचरा खाते हैं, ये देवता लोग उसको नहीं देखते। और आजकल देवता को पूजा करने जाते हैं लोग, देते हैं दुकान में जाते हैं नारियल, ये पूजा के लिए चाहिए, तो दुकान वाला पूजा के लिए नारियल सड़ा वाला रखता है, सूखा और सड़ा वाला, पूजा के लिए बता दे, पूजा के लिए चाहिए, पूजा के लिए सबसे अच्छा चीज चाहिए, लेकिन उसके लिए बोलते वो सस्ता वाला रखते हैं लोग पूजा के लिए, और उससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे सड़ा हुआ नारियल देने से। हाँ, दुर्गा जी जो प्रसन्न हो जाएंगे, वो जो है पूजा के लिए जो अलग से सड़ा हुआ चीजें रखा है वो हम चीज देवता को देते हैं, तो उसे हम स्वर्ग जा सकते हैं, संभव नहीं है। भक्ति ऐसा चीज है कि थोड़ा भी कुछ किया है, थोड़ा भी भक्ति किया है तो आपको एटलीस्ट आपको स्वर्ग भेजा जाता है, भले माया में चले गए तो क्या हुआ, तो स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्ग का जो विशाल भोग करके फिर इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारे संस्था में बहुत सारे देवता लोग जन्म लेंगे, ये सब भक्त को साधारण नहीं समझना चाहिए, बहुत सारे इसमें भक्त हैं जो देवता देवलोक से आए हुए हैं जो है, तो देवता देवलोक से आएंगे, क्या करने के लिए आएंगे, क्योंकि उन्होंने भोग लिया है और ऐसे घर में उनका जन्म होगा कि वो सिमताम, बहुत घर सब कुछ उसके घर में होगा, लेकिन फिर भी उसको कोई रुचि नहीं होगा, सब कुछ रहेगा, खाना पीना गाड़ी ये वो सब, लेकिन उसको रुचि नहीं, उसको रुचि कहां है, हरे कृष्ण की खिचड़ी खाने में, वो आएगा लाइन लगा के खिचड़ी खाएगा, उसके बाद भक्तों के साथ रहेगा, कीर्तन करेगा, उसमें उसको आनंद आता है। ऐसे कितने भक्त हैं और वो भक्ति बन जाते हैं क्योंकि उसमें रुचि, क्योंकि भोग लिया है ना, स्वर्ग में इतना बड़ा भोग के आया हुआ तो उसमें क्या उसके घर में रुचि होगी, भले उसका घर 5 स्टार होटल जैसा क्यों ना हो, नहीं पसंद आएगा, तब उसको भक्ति में आएगा और भक्ति से फिर वो भक्ति करेगा और भगवान के धाम में। दूसरे जो लोग हैं जिसने बहुत लंबा समय तक भक्ति किया है, 20 साल निकल गया, 25 साल निकल गया, देखते हैं कितने भक्त लोग हैं, कितने सालों से घिस रहे, भले मन नहीं लग रहा है, क्या हुआ, लगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, 20 साल निकाल दिए, 25 साल निकल दिया, और फिर भी बोला ये यार इतना दिन से भजन कर रहा है, इसको क्या है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये दोष है, माला करते समय सो जाता है, क्या है, सीनियर भक्त हो गया लेकिन अभी भी देखो इसका कुछ नहीं होने वाला है, भगवान को मालूम है हमारा भविष्य, उसने कितना प्रयास किया है, कितना भजन करने का प्रयास किया, कितना माया से लड़ने का प्रयास किया है, वो भगवान को मालूम, हम क्या हिसाब करेंगे। इसलिए हमें दोष ग्राही कभी नहीं होना चाहिए, वैष्णव को मैं कभी भी दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो किस अवस्था में था, अभी कहां पे है, वो कितना उसने भजन किया है, क्या इतिहास हम लिखेंगे, हम जानते हैं नहीं जानते, सब भगवान जानते हैं, तो भगवान को मालूम है कितना भजन है। तो जिसने इतना प्रयास करके भजन भक्ति इतना समय तक निकाला है, उसको क्या भगवान ऐसे फेंक देंगे, ठीक है वो कैसा उसका शरीर छूटा, भगवान इसके पहले श्लोक बताते हैं, स्मरण करने की बताते हैं कि स्मरण क्यों करना चाहिए हमें। यम यम वापी स्मरण भाव तजनते कलेवरम तम तमेति सदा तद्भाव भाविता। मरते समय जैसा जैसा विचार आएगा ऐसा ही आपको शरीर मिलेगा, लेकिन भक्तों के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है, ध्यान रखना ये भक्तों के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है। यम यम वापी स्मरण भाव ये भक्त के साथ नहीं, क्यों? क्योंकि भले उसने भक्ति लंबा किया, शरीर छोड़ते समय उसका मान लो स्मरण नहीं भी हुआ, तब भी भगवान का उसका इतिहास मालूम है कि उसने कितना भजन किया है, कितना भक्ति किया है, वो भगवान उसको लेके ही जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रभुपाद जी का शिष्य था, उसने बहुत सेवा दिया था, विदेशी भक्त था, सेवा दिया और फिर माया के प्रभाव से बाहर चला गया और जो है उसको बीमारी हो गई, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन फिर से वो भक्तों के संग में आया और आकर के भक्तों के संग में रहने लगा और शरीर छोड़ते समय बीमार था, बेड पे था, चल नहीं सकता, बहुत समय से उसको कैंसर हो गया था और मरते समय उसने जब शरीर छूटा उसने बोला जय श्री प्रभुपाद, दोनों हाथ उठा करके उसने बोला जय श्री प्रभुपाद, उसी समय शरीर छोड़ दे। प्रभुपाद जी ने कहा है जिसने भक्ति किया, इस संस्था की सेवा किया है, जो नियमों का पालन किया है, उसको मैं स्वयं आऊंगा लेने के लिए। उसने कृष्ण को स्मरण नहीं किया, उसने किसको स्मरण किया? प्रभुपाद जी को स्मरण किया, भगवान के धाम गया। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए और किसी भक्त में कोई दोष नहीं देखना चाहिए, कभी नहीं देखना चाहिए। कौन भक्त कितनी तपस्या कर रहा है, कितनी भक्ति कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने अपने मन और जो है अपने इंद्रियों से लड़ रहा है, किसको मालूम है? और ये तो गिर भी गया, जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, चल रहा है, चलने का प्रयास कर रहा है, वो गिर गया तो क्या उसकी माँ उसको फेंक देगी? अरे क्यों गिर गया ऐसे तो नहीं बोलेगी ना, उसको तो उठाकर और प्यार करेगी, अरे गिर गया तो उसको मदद करेगी, अभी तुम ऐसे चलो। तो ऐसे ही भक्तों को मदद करने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। तो जिसने लंबे समय तक भक्ति किया है उसका जन्म जो है मान लो पूरा नहीं हो पाया, उसने भजन भक्ति करके भगवान के धाम नहीं गया एक जन्म में, तो उसके उसका जन्म है कहां होता है? किसी भक्त के घर में जन्म होता है, किसी योगी के घर में जन्म होता है, जो शुरू से उसको ट्रेनिंग मिलता है, एकादशी का व्रत करता है। अब सोचिए दो साल एक साल के बच्चे एकादशी व्रत करते हैं, जिसके घर वैष्णव के घर में जो भी बच्चे हैं वो शुरू से भक्त करते हैं। हमारे घर में हमारी एक लड़की है, उसको हम एकादशी का व्रत रखते हैं, उसको खाना नहीं खिलाते हैं, वो एकादशी का, उसको कभी चॉकलेट वगैरह बोलते मुझे नहीं खाना है, चॉकलेट इसमें एक से है, अंडा है, नहीं खाना है। छोटी बच्ची, ये संस्कार तो मिलता ही है बचपन, ये संस्कार हमको नहीं मिला था, लेकिन बच्चे को तो मिलेगा ना। तो दो साल ढाई साल के उम्र में जो एकादशी का व्रत रखेगा और जो है भगवान को प्रणाम करेगा, भगवान के नाम लेगा, तुलसी आरती करेगा, नरसिंह आरती करेगा, तो क्या वो भगवान धाम नहीं जाएगा? उसका भाग्य कितना बड़ा है। तो सुचि नाम स्मिता में गए है, ऐसे पवित्र घर में उसका जन्म होता है कि शुरू से उसको ट्रेनिंग मिलता है भक्ति का और वो एक ही जन्म में भगवान के धाम चला जाता है। तो यहां अर्जुन जो है यह प्रश्न करता है कि इस प्रश्न का जवाब केवल आप दे सकते हैं, किसका इतिहास क्या है कौन बोलेगा? तो हम लोग जो है ऊपर से देखकर बोलते रहे भक्त इतना साल से फिर कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया। नहीं, इतना साल से है वही बहुत बड़ी बात है, इतने साल से है ही बहुत। एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए, वहां पे एक भक्त टेंपल प्रेसिडेंट ने कंप्लेन किया कि प्रभुपाद जी देखो ये भक्त आया, देवी चला गया, वो आया वो भी चला गया, आते हैं ज्वाइन करते हैं चले जाते हैं, अभी मैं क्या करूं अकेला। तो प्रभुपाद जी उसको देख करके ऐसे काफी देर तक देख कर हंसने लगे, बोले प्रभुपाद जी हंस क्यों रहे आप, ये सब भक्त आया और चला गया, मैं इतना प्रयास किया कोई नहीं टिका। अरे बोले मुझे आश्चर्य हो रहा है तुम अभी तक इधर है। प्रभुपाद जी बोलते ये मुझे आश्चर्य है अभी तक तुम हो। ये बहुत बड़ी बात है, जो भक्त है उनको मदद करना है, यही सोचा ये चला गया वो चला गया उसको लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति है जितना दिन तक है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाहर की दुनिया पूरा उल्टा चल रहा है। ये प्रभुपाद जी की गंगा जो है उल्टी बह रही है कलयुग में, कोई नहीं चल सकता, चार नियमों का पालन किसी भी जगह नहीं करते हैं। हमने बहुत वैष्णव संप्रदाय भी देखा है, वैष्णव संप्रदाय में भी चाय तो पीते हैं कम से कम, दूसरी बात तो छोड़िए चाय तो पियेंगे वैष्णव संप्रदाय में, एकादशी होगा तो चाय पियेंगे, नशा करेंगे एकादशी में। तो आप सोचिए, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ है जहां वे सब नियमों का सभी पालन करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान को कवि कहते हैं। फिर कहते हैं पुराणम, भगवान एक तो कवि हैं और सबसे पुराने व्यक्ति हैं। तो पुराने का मतलब नहीं है कि बूढ़े हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, इवन ऐसी भारतवर्ष में भी ऐसी संप्रदाय है कि वो भगवान को बूढ़ा मानते हैं, कि भगवान है लेकिन बूढ़े हो गए हैं, या भगवान, कुछ लोग ऐसे समझते भगवान है लेकिन उनकी बुद्धि अभी काम नहीं कर रही, क्योंकि इतना दुखी लोग पड़े हैं रोड पे, किसी लूले है, लंगड़े है, अंधे है, और भगवान है उसकी बुद्धि फेल हो गई, इनको लूले लंगड़ा क्यों बना दिया, तो क्या वो स्वयं भगवान बन जाते हैं? दरिद्र नारायण की सेवा बोलते, यही नारायण है बस इनका भजन करो, इनकी सेवा करो, कितना अज्ञान है। आप सोच सकते हैं। तो भगवान जो है बूढ़े नहीं, और विदेशों में ऐसा एटलस दिखाया गया है कि भगवान जो है लेकिन जो है उनके संसार का बहुत उनके सिर पे बोझा आ गया है, इसलिए उनके मसल्स निकल गए हैं और बड़ी मुश्किल से वो पूरे संसार को चला रहे हैं। भगवान कभी उनको कुछ नहीं है, वो बड़े मुस्कुराते रहते हैं, बांसुरी लेके अपना बांसुरी बजाते रहते हैं, उनको कोई वजन नहीं है, वजन हम लोगों के ऊपर है, हम भजन जो नहीं कर रहे हैं। हम भजन करेंगे तो हम भी भगवान के साथ आनंद करेंगे, और भजन ना करने से हम दुखी हैं, इसलिए भगवान सोचते हैं कि सब जो है आनंद करें हमारे साथ। गोलोक वृंदावन भगवान जो है ओपन इन्विटेशन देते, आ जाओ सब, लेकिन किसी को जाना नहीं है, सबको इधर ही रहना है, यह दुख बात। इसलिए बताते हैं अदोहितम अचोतम अनादि अनंत रूपम आदम पुराण पुरुषम नव यवनम च, भगवान सबसे पुराने भक्त हैं, व्यक्ति हैं, उनसे पुराना कोई नहीं है। जब ये संसार नहीं था तो भगवान थे, और संसार जो रहेगा तब भी भगवान है, और संसार नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे, हमेशा है जो है। तो सबसे पुराने लेकिन नव यवनम च, हमेशा युवक, जैसे जो है गुलाब खिलने से पहले कितना सुंदर लगता है, कमल देखा होगा, कमल जो पंखुड़ी निकलती है खिलने वाला होता है सुबह का, उस समय आप देखो तो ऐसा भगवान है, ऐसा लगता है कि उनका युवक अभी आने वाला है, आता ना ऐसे आने वाला, ऐसा जैसे पंखुड़ी, जैसे गुलाब खिलता है खिलने वाला, ऐसा भगवान का स्वरूप है, हमेशा नव यवन रहते हैं। इसलिए आप देखिए भगवद गीता में भगवान का फोटो, इस समय कितना साल हुआ है भगवान का, इस समय जो है लगभग 95 ईयर हुआ है भगवान का, 125 साल तक इस धराधाम में थे, लेकिन युद्ध हुआ था उससे पहले, तो लगभग 95 साल के, लेकिन कैसे लगते हैं न यवन, 16 साल के युवक हैं। इसलिए एक ही गलती अभी तक भारतवर्ष में नहीं हुआ है कि भगवान का फोटो बुढ़ापे का बनाया है, और ये भी कर देंगे, ध्यान रखना। इसलिए गीता भागवत हमें पढ़ते रहना है, जानते रहना है भगवान के, ये कुछ भी हो सकता है इस कलयुग में, और जो नेता लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं वोट पाने के लिए, सीट पाने के लिए, एक दिन बूढ़ा भी बना देंगे। जब यहां पर नेता ऐसा हो सकता है कि भगवान राम के जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, और आज भी वह व्यक्ति जिंदा है, उसको अभी तक किसी ने मारा नहीं है, आप सोचो, ये है दुर्भाग्य भारतवर्ष का। वो बोलता है राम जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, और वो नेता है और जी रहा है, उसको अभी तक लोगों ने मारा नहीं है, ये है हमारा भारतवर्ष का दुर्भाग्य। तो ये भी हो सकता है, इसलिए हमें शास्त्रों को पढ़ना है, भगवान के स्वरूप को समझना है, भगवान वास्तव में क्या है। भगवान हमेशा नव यौवनम, हमेशा युवक रहते हैं, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। ये भी कहते हैं अनुशासिता राम, और भगवान के शासन में हर व्यक्ति है, भगवान के शासन से अलग कोई नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं लगता है अरे भगवान जैसे यहां पे अभी यहां का मैनेजमेंट नहीं रहे तो सब मनमानी हो जाएंगे, अपने मन से सब कुछ करने लगेंगे, लेकिन भगवान का मैनेजमेंट, भले भगवान है नहीं है, दिखते नहीं है, भगवान गोलोक यूनिवर्सिटी का अखिलात्मभूत है, गोलोक वृंदावन में बैठे हैं, लेकिन सब कुछ कंट्रोल है, कोई चीज उनसे बाहर नहीं। हम कितना भी फिरंगी जैसे नाचते रहे, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, सब कुछ कर लो, एक सेकंड में भगवान सारा प्लान फेल कर देते हैं। कुछ प्लान कर लो, जितना भी दौड़ो दौड़ो, कहां तक दौड़ोगे, लगाम तो भगवान के हाथ में है। प्रकृति क्रिया मनाने गुड़ कर्माणी सर्वसा अहंकार विहुन आत्मा करता हम इति मन, हम सोचते हैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन सब कुछ प्रकृति के हाथ में है। भगवान डायरेक्ट नहीं करते, लेकिन सब उनके अनुयायी लगे हैं, सब कुछ, हम उनके शासन से बाहर नहीं जा सकते। सूर्य है, चंद्र है, इतने सारे तारे है, ग्रह, सब कुछ कंट्रोल में है, भगवान के कंट्रोल में, कोई भी भगवान के कंट्रोल से बाहर नहीं जा सकता। और प्रत्यक्ष भगवान ने इस लीला को दिखाया है, प्रत्यक्ष भगवान ने इस लीला को दिखाया। जब महाभारत के युद्ध हो रहा था, अर्जुन ने एक दिन प्रतिज्ञा किया, जब जो अभिमन्यु को सारे महारथी लोग मिल करके मार डाला, अभिमन्यु सब महारथियों ने मिलकर, दूसरी में उसमें सबसे बड़ा हाथ था जयद्रथ का, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि आज सूर्य अस्त होने से पहले पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, और नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा करूंगा, ऐसा उसने प्रतिज्ञा किया। और युद्ध और यह बात जो है दूसरे पक्ष के लोग सबको मालूम हो गया कि अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा किया है कि सूर्य अस्त होने से पहले वो अग्नि में प्रवेश कर देगा। और अर्जुन था पूरे महाभारत के हीरो, सबने बोला कि यदि हीरो खत्म हो गया तो फिर फिल्म का कोई मतलब नहीं, हीरो ही नहीं तो फिल्म क्या बनेगा तो हीरो था ही नहीं, होगा नहीं थे महाभारत युद्ध तो ऐसे खत्म हो गया। सब खुश हो गए, बोले बिना के प्रयास का हमारा समस्या सॉल्व हो गया। तो सारे जो कौरवों की पार्टी में सबने निश्चय किया कि आज जयद्रथ का मुख नहीं देखने पाएगा, जब तक सूर्य नहीं डूबेगा तब तक ये अर्जुन उसका मुख नहीं देखने पाएगा, और सबने उसको सबसे पीछे लगा दिया और सारे महारथियों को आगे लगा दिया, और अर्जुन पूरा युद्ध करता रहा और सभी को जब तक मारेगा नहीं तब तक जयद्रथ को कैसे पड़े मिलेगा, जयद्रथ मिल नहीं सकता था, और लगा युद्ध करने, पूरा लड़ने लगा, लड़ते लड़ते और शाम हो गया, दिन जो है डूबने लगा और वो जयद्रथ का पता नहीं चला, और जब देखा कि दिन डूब गया है तो उसने सीधा अपना गांडू धनुष को नीचे रखा और रथ से उतरने लगा। तो अर्जुन भगवान ने बोले ये क्या कर रहे हो तुम, बोले हमने प्रतिज्ञा लिया आपको मालूम नहीं है, बोला क्या प्रतिज्ञा लिए हो, भगवान ने पूछा क्या तुमने प्रतिज्ञा लिया, बोला हमने ऐसा प्रतिज्ञा लिया था कि जयद्रथ को दिन डूबने से पहले हमको मारना है, नहीं मारूंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा और मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने जा रहा हूं। बोला अरे दिन डूबा है, किसने बोला तुम्हें, भगवान ने बोला देखो वो तो दिन ऊपर है, ऐसा हाथ उठाया तो सूर्य ऊपर आ गया, ऐसा हाथ ये है भगवान, ये मूर्ख लोग आज भगवान की पूजा करते कितने लोग हैं, दादा भगवान, ए भगवान, ओ भगवान, कैसे है, अरे ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी हुआ है, दांत टूटा हुआ है, बूढ़े हो गए हैं, उनका उनकी पूजा करते हैं जबकि उनके नियंत्रण में उनका खुद की इंद्रिय नहीं है, चाय नहीं मिले तो मरने लगेंगे, और ऐसे ऐसे लोगों की पूजा कर, कितना बड़ा अज्ञान है, अब सोचो कलयुग में कितना बड़ा अज्ञान है, ऐसे लोगों की पूजा कर रहे हैं, अब भगवान यहां साक्षात दिखा रहे हैं, ऐसा किया बोले सूर्य ऊपर आ गया, बोला दिन नहीं डूबा अभी मारो जयद्रथ आ गया, और सब आए थे एक खेल देखने के लिए कि अर्जुन जो है कैसे जो है अग्नि में प्रवेश करने करे, और जयद्रथ भी आए थे खेल देखने के लिए कि अभी अग्नि में प्रवेश कर हम लोग देखेंगे। भगवान ने बोला देखो इधर आया है और इसको ऐसा मारो, इसको वरदान मिला है, इसका खोपड़ी नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो इसकी खोपड़ी गिराएगा वो मर जाएगा, तो इसका बाप जो है शिव जी की पूजा कर रहा है उधर हिमालय में, उसको भी मारो क्योंकि वो भी जो है शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहा है, भक्ति पर प्राप्त करने के लिए नहीं, तो उसको भी मारो तुम, तो इसके सिर को ऐसा उड़ाओ कि जाकर उसके हाथ में पड़े, और वो मारा सिर, उसका बाप जो है वहां भजन कर रहा था शिव जी का हिमालय के खोह में, वहां पे उसका सिर पड़ा, वो देखा ही क्या आ गया और उसने फेंका और वो भी मर गया। ये है भगवान, ये बताते हैं कभी पूरा अनुशासित आरम्भ, भगवान के शासन में सब कुछ है, उनसे बाहर नहीं, इस रूप में भगवान का पूजा करना चाहिए, ऐसे भगवान का नहीं पूजा करना चाहिए जो इसका खुद का इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, अपने मन कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, वो क्या इस दुनिया को कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो ऐसे भगवान की पूजा करना चाहिए, विचार ऐसा स्मरण करते हुए भगवान की पूजा करना चाहिए, उनके स्वरूप को याद करना चाहिए। और क्या अड़ो अड़ियासम अनुस्मरेद्य, और भगवान जो है सबसे छोटे से छोटे हैं, अड़ो अड़ियाम महितो महियाम, भगवान छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हैं, भगवान जो है हमारे आत्मा कितना छोटा है शास्त्र में बताया गया है, आत्मा इतना छोटा है कि बाल के अग्र भाग है उसका 10,000वां भाग जो है वो है आत्मा का साइज बताया गया है। आप सोचिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि बाल के दो भाग कर दे, अभी तक ये टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है कि बाल के अग्र भाग को दो भाग कर दे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं कर सकता, और इसका 10,000वां भाग कौन करेगा, हो सकता है बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी हो सकता है लेकिन ये कुछ ये नहीं हो सकता है, बड़ी बड़ी चीजें चल रही है और ये सब केवल जो है हमारे माया का प्रकोप है, हमको ये माया में फंसाने के लिए ऐसा लगता है ये कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी आ गई, वो टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, ईट पत्थर कोई नहीं खाएगा, बाद में ये भोजन करना पड़ेगा, पत्रम पुष्पम फलम तो है, आज वो हो नहीं रहा, लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम भक्त लोग बोलते हैं हरा साग नहीं मिलता है, अब देखिए क्या मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा, सबको जो है ये बाहर की दुनिया चकाचौंध की दुनिया में जीना है, नेचुरल प्रकृति से सबको दूर जाना है, और जितना हम प्रकृति से दूर जाएंगे उतना हमें दुख मिलेगा, जितना प्रकृति से हम दूर जाएंगे उतना हमें ये बिल्डिंगें हमें काम नहीं आएंगी, 120 तल्ले का 150 तल्ले का बिल्डिंग काम नहीं आएगा, तो ये बहुत बड़ा अज्ञान चल रहा है, और भक्त लोग हैं कि जो बुद्धिमान है उनको अपने जीवन को जितना सिंपल कर सके, सारा जीवन उच्च विचार, जितना सिंपल कर सके बहुत अच्छा है, समय निकाल करके सिंपल जीवन व्यतीत करो, समय निकाल करके भजन करो, भगवान के धाम जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है, यहाँ के बहुत सारे भक्त जो अभी भी तंदुरुस्त है, बुद्धि अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन बोलते प्रभु जी अभी मैंने भजन काम करना छोड़ दिया, अभी तो भजन करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, विदेशों में है लोग 80 साल के 70 साल की आयु में शादी करने जाते हैं ये हालत है, और यहाँ भी ऐसी संप्रदाय है, आप सब मालूम होगा जो इंटरनेट वगैरह बैठते होंगे, यहाँ भी ऐसे संप्रदाय जो बुड्ढों की शादी कराते हैं, अब बोलते हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप सोचिए उनकी शादी भगवान से करा न करा करके संसार की माया से करा, और माया ने इतना मार दिया है उसके बावजूद उसमें लगे हुए, इतना अज्ञान सोचिए बढ़ रहा है, तो कहने करते हैं कि जितना सिंपल जीवन है, भगवान जो है अड़ो अड़ियाम, भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म है, हमारे आत्मा कितना छोटा, उसके हृदय में भगवान रहते हैं, आप सोचिए आत्मा के हृदय में परमात्मा रहते हैं, इतने छोटे हैं, और बड़े कितने हैं भगवान, कितने बड़े हैं कि जो बाखन भगवान जो है मिट्टी खाया था, यशोदा मैया ने देखा था, पूरा ब्रह्मांड अंदर देखा, इतने बड़े हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर है, और इतने छोटे हैं कि आत्मा के भी हृदय में रहते हैं, इस रूप में भगवान को देखना चाहिए, ऐसे आलतू फालतू भगवान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमारा भी जीवन जाएगा, उनका जीवन तो नरक में जाने वाला है, सब पूरा परिवार के साथ जाएंगे, पूरा संस्था के साथ जाएंगे, ये लिखा हुआ है शास्त्र में, कलयुग में जो गुरु होंगे जो अपने को भगवान मान के पूजा करवा रहे हैं, ये बाद में कुत्ते बनेंगे, मालूम है, और कुत्ते बनेंगे, उनके सिर में कैंसर हो जाएगा, सब कीड़े पड़ेंगे, सारे शिष्य लोग उनको खाएंगे, क्योंकि उसने खाया ना, खूब दक्षिणा लिया है, खूब भोग विलास किया है, तो सब कीड़े बन जाएंगे, और कीड़े बन करके उसके सिर को खाएंगे, और वो भागता रहेगा, यहां वहां भागते रहेगा, और कुत्ते के मौत मर जाएगा, ये लिखा हुआ है शास्त्र में, शास्त्र में लिखा, इसलिए ऐसे भगवान के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, श्याम सुंदर राधा गिरधारी है, जगन्नाथ है, बलदेव है, सुबह सब इनके भजन करना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु है, इनका भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, इनका कृपा का याचना करना चाहिए, तो यहां बताते हैं, अड़ो अड़ियाम अड़ियाम अनुस्मरेद सर्वस्य दाताराम अचिंत रूपम, सर्वस्य दाताराम, दाताराम का मतलब होता है सबका पालन कर रहे, सबके पिता भगवान है, चाहे सुर हो या सुर हो, ये सारे जो भगवान का भजन नहीं करने वाले उसको भी हवा पानी कौन दे रहा है, वो बोलते हैं भगवान नहीं है और एक दिन के लिए बंद कर दे साहब तो क्या होगा, म्युनिसिपल वाले ने पानी कब तक देंगे तो लेकिन अज्ञान है, बोले भगवान कोई जैसा चीज नहीं है, थोड़ा धन मिल गया दौलत मिल गया तो बोलते भगवान जैसा कोई चीज, कितना बड़ा अज्ञान है, अब सोचो ये सारा मैनेजमेंट आप कर रहे हो, सब कुछ हवा पानी ये सब जो मिल रहा है कहां से आ रहा है, लेकिन अज्ञान में ये सब आदमी बोलता है, मूढ़ है, मूढ़ जब मूर्ख हो जाता है, जब कोई किसी को भूत पकड़ लेता है, घोस्ट जब भूत पकड़ लेता है, जो हॉन्टेड बाय द घोस्ट जब उसको पकड़ लेता है भूत, तो कुछ भी बकता है, कुछ भी अनुसरण बकता रहता है, ऐसा है वैसा है, जब इस संसार में जब व्यक्ति को माया का भूत पकड़ लेता है तो कुछ भी बोलता है, भगवान नहीं है, भगवान है निराकार है, रूप नहीं है, तो तुम भगवान निराकार है, लेकिन तुम क्यों भगवान के विषय में बोल करके तुम पूजा करवा रहे हो, और बाद में खुद भगवान बनता है, गुरु ही भगवान हो जाता है, भगवान को निराकार बोलता है, तो तुम आकार लेके क्यों इधर आए हो पूजा लेने के लिए, तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है, भगवान पुरुषम, हर जगह भगवान को पुरुष कहा गया है, व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है, हमारे भाव को समझते, भाव ग्राही जनार्दना, हम जो बोलते हैं, जो करते हैं भजन, जो उनके साथ हमारा संबंध है, वो भाव को हमारे ग्रहण करते हैं, भाव का आदान प्रदान होता है, नहीं तो कौन भगवान का भजन करेगा, कोई करेगा? ये भगवान का नाम लेते हैं, इसमें जो आनंद आता है, तो इसमें आदान प्रदान होता है ना, हरि नाम प्रभु बोलते हैं, हरि नाम प्रभु है, उनसे उनसे हमारा संबंध है, हम जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसके साथ भगवान उसका जो है हमें उसका उत्तर देते हैं, तो भाव है भगवान, इसलिए भगवान को हर जगह पुरुष बोला गया है, पूरा ब्रह्म संहिता में भगवान आदि पुरुषम बोला गया है, आदि पुरुषम, भगवान आदि पुरुष है, पुरुष है, भगवान निराकार नहीं है, और निराकार के संप्रदाय पूरे भारत में देखा जाए तो कम से कम लाखों होंगे, सब निराकार के संप्रदाय, देखिए निराकार, और भगवान को निराकार बना दिया और आकार बनाकर कुछ पूजा ले रहे हैं अपना आकार देख करके, पूरा संसार बनाया इतना सुंदर, और इस संसार को देखने में बहुत बहुत रुचि होती, भगवान का बनाया हुआ आकार सबको देखना है, सबको भोगना है, और भगवान को बोलते हैं निराकार, इसके पास रूप नहीं है, इसके पास कोई गुण नहीं है, इसके पास, अभी बहुत गाली देने की बात है, भगवान को कोई बोले, कोई व्यक्ति आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन आपके पास नाक नहीं है, बहुत सुंदर है, आपके पास अंधे है, आपके पास आंख नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन आपके पास पांव नहीं है, बहुत बड़ा आज्ञा, ये तो गाली देने की बात है ना, हम बोले आप बहुत सुंदर हो लेकिन आपको आंख नहीं, अंधे हो, अच्छा लगेगा? और ये है सब पूजा करते भजन करते बोलते भगवान मिल जाएंगे, तो नरक में जब जाएंगे, भगवान जो उपनिषदों में बताया गया है उसका मतलब है कि उन भगवान का आंख हमारे जैसा आंख नहीं है, भगवान का आंख भगवान श्याम सुंदर है, भगवान का कमल लोचन है, उनका आंख कमल के जैसा है, बहुत सुंदर है, हमारा तो चमड़े का है, थोड़ा हो गया कुछ तो कैटरेक्ट ऑपरेशन करना पड़े, ये करना पड़े, वो करना पड़ेगा, बहुत अंदर सब बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, भगवान का जो है अचिंत है, इस परे, आगे इस लोग यहां बताए हैं तमसा परस्ता, भगवान जो है इस संसार से परे है, उनके हर चीज परे है, अचिंत है, भगवान का आंख है, नाक है, कान है, जीवा सब कुछ है, लेकिन इस संसार से परे है, दिव्य है, इसलिए वो बताया गया है कि भगवान अरूपम, भगवान का जो रूप है इस भौतिक रूप नहीं है, भगवान का रूप अचिंत है, दिव्य है, सच्चिदानंद है, इस चीज को समझाने के लिए उपनिषदों में ऐसा बोला गया, लेकिन मूर्ख लोग बोलते हैं कि भगवान के पास आंख नहीं है, रूप नहीं है, क्यों मंदिर में जाते हो, क्या जरूरत है पूजा करने की, पत्थर की पूजा किया जाता, ऐसे अज्ञान है, ऐसे व्यक्तियों का मुख भी नहीं देखना चाहिए, ऐसे भक्तों, ऐसे लोगों के संग में जाना छोड़, उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, तो यहां इसलिए बताया गया है कि दाता राम, भगवान जो है सबका पालन कर रहे हैं, पिता है भले बच्चा बिगड़ गया, कुछ हो गया तो क्या हुआ, भगवान को भले कुछ बोले, बच्चा कितना पिता बोले आपने इतना, पिता जो है उसको लिखाता है, पढ़ाता है, सब कुछ करता है, अब बाद में आपने क्या किया, अब खुद एक घर लेकर नहीं ला सकता है, एक घर खरीद नहीं सकता, लेकिन पिता को बोलता है हमने अब क्या किया, ये बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन फिर भी पिता बोलता है तुमको मालूम पड़ेगा जब तुम करोगे तब तो ऐसे भगवान है, हम बोलते हैं अरे भगवान का रूप नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, भजन है, लेकिन भगवान जानते हैं, चलो आप कभी न कभी बुद्धि खुलेगी ना, जब माया का लाद पड़ेगा तब बुद्धि खुलेगी ना, लेकिन फिर भी भगवान उसको देते हैं सब कुछ, उसका पालन करते हैं, भगवान जेल के अंदर है, अपराधी होता है, लेकिन फिर भी उसका पालन तो किया जाता है ना, गवर्नमेंट उसके लिए अरेंजमेंट करती है, खाना पीना सब व्यवस्था तो करती है, लेकिन वो सोच ले बस इसी में पड़ा रहना है, तो मूर्ख है, कुछ लोग हैं जिसको जिसकी आदत बिगड़ गई है, जेल में रहने की आदत, तो बोलते हैं यही खाना पीना मिल रहा है, कहां जाएगा बाहर में, और आजकल हमने सुना है कि अपराधी लोग, क्रिमिनल लोग वहां भी अपना करप्शन, पैसा मंगा करके बोलते हैं उसमें अपना कपड़ा धुलवाते हैं, मसाज करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं जेल के अंदर, सब स्पेशलिटी बना लेते हैं, तो करप्टेड जीवन है, यहां ऐसा हो सकता है, तो भगवान जो जैसे जेल में सब व्यवस्था होता है, ऐसे भगवान भी भले हम कुछ भी कर रहे हैं फिर भी भगवान हमारे लिए सब व्यवस्था करते, सब कुछ देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है भगवान नहीं है, भगवान का भजन नहीं करना है, सब कुछ तो मिल रहा है, खाना पीना बधु सारोज है, सब ठीक है, भजन नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना हमारे जीवन का उद्देश्य, भले कोई सारू अच्छा रहे या ना रहे, हमारे जीवन में दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, समस्याएं हो, शरीर ठीक है नहीं है, फिर भी भजन करना है, क्यों? क्योंकि जाना तो भगवान के पास है, इस संसार के हमारे कर्म के हिसाब से जो भी हमें मिला है उसको सहना चाहिए, उसको सहना चाहिए, ऐसा कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब तक हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा तब तक हमारे कर्म का चक्र नहीं खत्म होगा, कम हो सकता है लेकिन पूरा खत्म नहीं हो, जब प्रेम मिलेगा, भगवत प्रेम मिलेगा, तब हमारे कर्म का चक्र पूरा खत्म हो। भगवत प्रेम भी भगवान ही देंगे, दूसरा कोई नहीं देगा हमें। इसलिए हमें भजन करते रहना चाहिए बिना किसी कंप्लेन का। कोई कोई आता है, अरे हमने इतना दिन मंदिर गया, देखो हमारे घर में सब बीमारी बीमार हो गए। अरे मंदिर में जाने से बीमार हो गए कि तुम्हारा कर्म तुमको बीमार कर रहा है? ऐसे लोग हैं, दुर्बुद्धि लोग हैं ऐसे, तो उनसे, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हमारे जीवन में दुख हो सुख हो जो भी हो, उसको सहते हुए जब व्यक्ति भजन करता है, भगवान उसे बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके कर्म का चक्र भरे पहाड़ जैसा, उसको सब खत्म कर देते हैं भगवान, और अंत में उसको अपने धाम में बुला लेते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यहाँ कहते हैं दादा अचिंत रूपम, भगवान का जो हमने चर्चा की अचिंत रूप है, भगवान का रूप जो है ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमारे जैसे हैं भगवान। भगवान का रूप जो है अचिंत है, उनके गुण अचिंत है, उनके लीला अचिंत, सब कुछ अचिंत है। अचिंत का मतलब है जो अपने बुद्धि से समझ नहीं सकते हम, बुद्धि नहीं लगाना चाहिए बोल, हमें जैसा है उसको ऐसा सुनना चाहिए, क्योंकि बुद्धि लगाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। भगवान को प्रमाणिक व्यक्ति से यथा रूप से सुनना चाहिए। श्रवणम, श्रवण करने से हम अपने आप हमारे हृदय में सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितने भी संशय है, संशय को भी नष्ट करने वाले भगवान ही है। अर्जुन को कितना संशय था, पूरा भगवत गीता उसके संशय के ऊपर बना है, उसका संशय था, लेकिन भगवान ने उसके संशय को पूरा काट दिया और अर्जुन पूरा पूरी शक्ति से युद्ध लड़ा और 64 करोड़ लोगों को मार दिया। पूरी शक्ति थे, संशय भी हमारा नष्ट कौन करेगा, भगवान करेंगे। इसलिए हमें भगवान का भजन कीर्तन में भक्ति में सेवा में लगे रहना चाहिए। जो भी संशय है जो है सब भगवान धीरे धीरे निकाल देंगे। बहुत जो है अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बुद्धि लगाएंगे तो माया में बहुत जल्दी चले जाएंगे। ध्यान रखना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, बुद्धि लगाई लगा, भक्ति कैसे करना उसमें बुद्धि लगाना चाहिए कि ठीक है संसार से कैसे निकलना है, कैसे टाइम निकालना है, माया को कैसे चिट करना है, ये सब बुद्धि लगाना चाहिए। जैसे माया हमें ठगती है, हमें भी माया को ठगना चाहिए। ध्यान रखना, भक्तों के साथ ठग विद्या नहीं चलानी चाहिए, ठग विद्या माया के साथ चलानी चाहिए। ठीक है ऑफिस में है बॉस, देख रहा काम हो गया तो बॉस को बोल देना चाहिए मेरा पेट खराब हो गया, आज यहाँ गुरु जी का प्रवचन है जाकर सुनना है। ठीक है, ये ठग करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। पेट खराब हो गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ बहाना करके वृंदावन चले जाना चाहिए। मैं गया था थोड़ा कुछ टूर पे गया था, चलो पत्नी को बोल करके चले जाना चाहिए वृंदावन में रहना चाहिए। क्या ये सब ठग करना चाहिए? लेकिन भक्तों के साथ ठग है, लेकिन हम क्या होता है जो सारी ठग विद्या इधर ही लगा देते कभी कभी, भजन में भक्ति में ठग विद्या चालू कर देते, तो उसमें हमारा पतन हो जाता है। माया जो है ठग है, और उसके साथ ठग करना अच्छा है। भक्तों के साथ, भगवान के साथ, शास्त्र के साथ ठग विद्या कभी नहीं करना चाहिए। जो है उसको इसी रूप में समझना चाहिए, भक्तों के साथ हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, हमेशा कभी भी जो है विश्वासघात नहीं करना चाहिए, कभी भी अपनी बुद्धि लगाकर भक्तों को चिट नहीं करना चाहिए। भक्तों के आपस में वैष्णव समाज में कभी भी जो है चिटिंग नहीं होना चाहिए एक दूसरे को। अब माया के साथ चिटिंग पूरा करना चाहिए, क्योंकि उससे बचना है, उससे बचना है तो उसको चिट करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अचिंत रूप आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। अब भगवान जो है सूर्य के समान है, आदित्य वर्णम, सूर्य के जैसा प्रकाशमय है। इसलिए बताते हैं कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां है ते कृष्ण तहां नाहि माया अधिकार। सूर्य सम, कृष्ण जो है सूर्य के जैसे हैं, चमक रहे हैं, उनके तेज है, वो हमेशा भाव में रखना चाहिए। और जो हमारे हृदय वैसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि आप कृपा करके मेरे हृदय रूपी अंधकार को, मैल को खत्म करिए। इस रूप में भगवान का स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। जो इस प्रकार स्मरण करता है, भगवान कहते हो मेरे धाम में बहुत जल्दी ही आ जाता है। तो समय हो गया है और मैंने बहुत यहां पे देखा कि बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं, और मेरी हिम्मत नहीं थी आप सब इतने सारे लोगों के बीच में प्रवचन करने का। फिर भी आप सब कृपा से जो भी मैंने बोला है उसमें कुछ भी त्रुटि हुई हो, जो भी हो, उसमें हमें क्षमा करिएगा। और इसमें से कुछ लगा होगी अच्छी चीज है, आप सब तो जानते ही है, तो आप ले लेंगे तो इससे हमें गुरु परंपरा का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा कि इससे कुछ मिल करके हमारे जीवन में परिवर्तन हो, तो इससे हमें पूरी परंपरा का आशीर्वाद मिलेगा, वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रोजेक्ट टाइम है प्रश्न पूछने के? नहीं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, ऐसे तो प्रश्न नहीं होगा क्योंकि आप सब भक्त हैं, मुझसे ज्यादा जानकार है, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है क्योंकि मंदिर चलाना मंदिर को मैनेज करना बहुत कठिन काम है। मैं तो कमलोचन प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि कुछ भक्त यहाँ से भेजे, इतने सारे भक्त हैं, केनिया भेजो सब मंदिर चलाएं फिर मैं भजन करूं ठीक से। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी प्रश्न है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे इस ग्रेस आनंद प्रभु को, हमारे आनंद प्रभु है ये महाराज की आज्ञा से वो गए मुंबासा, किनिया गए पहले, बाद में मुंबासा का अध्यक्ष बने और उनकी अध्यक्षता में उन्हें बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण किया है। तो राधा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विशेष आशीर्वाद है उनके ऊपर तो हम आशा करते हैं कि वो भी प्रार्थना कीजिए हमारे ये मंदिर ऐसे ही भव्य हो तो उनको आभार व्यक्त करते हुए एक बार हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले रविवार का जो प्रसादम का जो सेवा है वो लाल गोविंद प्रभु का ग्रुप का है, तो ध्यान रखें अगले